नुमा शाम की घड़ी में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। 1969 जिस वर्ष ब्रह्मा भाभा अव्यक्त हुए, उसी वर्ष आपने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और मधुबन में आए और टीचर्स जो ट्रेनिंग फर्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग हुई उसमें भाग लिया और वहीं से आरंभ हो गई आपके समर्पित जीवन की यात्रा। ट्रेनिंग लेकर आप विभिन्न स्थानों पर जहां बाबा ने आपको भेजा, जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, उसके बाद आप नेपाल भी गए, फिर अफ्रीका भी गए, फिर मॉरिशस भी गए। इस तरीके से 69 से लेकर 76 तक आप देश और विदेश में जहां जहां बाबा ने आपको भेजा सेवाएं करते रहे और वहां सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर 76 में जब आप मॉरिशस से पार्टी लेकर आए आपके लिए जैसे कि आपके हाथ में एक लॉटरी आई। दादी ने आपको यहाँ रहने का बहुत सुंदर ऑफर दिया जिसको आपने बहुत प्यार से स्वीकार किया। तो 76 से लेकर आज दिन तक आप मधुबन में स्थायी रूप से रहते हुए देश विदेश की सेवाएं कर रहे हैं। बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिए हैं आपको। आप हर की पौड़ी की गंगा है। आपके जीवा पर विद्या की देवी सरस्वती सदा ही विराजमान रहेगी। इतने सुंदर वरदानों से श्रृंगारित है और इसके साथ साथ आपको हिंदी, अंग्रेजी और सिंधी इन तीनों भाषाओं में आप धारा प्रवाह बोलते भी हैं और धारा प्रवाह ट्रांसलेशन भी करते हैं। और न सिर्फ इतना, बाबा के ज्ञान को बहुत सहज सरल तरीके से स्पष्ट भी करते हैं। आपकी इन्हीं खूबियों के कारण आपको मधुबन का चांस भी मिला। तो दादियों के अंग संग और बाबा के अंग संग बैठने का भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। वर्तमान में आप राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं और एजुकेशन विंग की वाइस चेयरपर्सन हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं, दादियां धीरे धीरे अव्यक्त वतन की ओर बाबा के पास एडवांस पार्टी में आगे की प्लानिंग के लिए चलते जा रहे हैं। तो मधुबन कैंपस में रहते हुए आपने जो दादियों से पालना ली है, जो बाबा से पालना ली है साकार मम्मा बाबा से, और वही पालना का रिटर्न अब आप यहाँ आने वाले हर भाई बहनों को देते हैं। बहुत ही ऊंची जिम्मेवारियां प्रतिभाओं से संपन्न होते हुए भी बहुत ही नम्रचित, मधुर, मिलनसार होने के कारण सब ऐसे अप्रोच करते हैं जैसे कोई हमारे अपने ही हैं। नहीं तो कई जब बड़ी पोस्ट होती है तो थोड़ा सा मिलने में क्या होता है, संकोच होता है। लेकिन दीदी का क्या कहें कि वो पर्सनालिटी में ऐसा चुंबकत्व है, सब अपने आप खींचे चले आते हैं। तो ऐसे दीदी से अभी हम सुनेंगे भट्टी का लक्ष्य, संस्कार परिवर्तन, योग तपस्या, अनुभूति हम कैसे करें। उससे पहले कि दीदी कुछ शुरुआत करें, मैं ये जानना चाहूंगी यहाँ जो भी भाई बहनें भट्टी करने के लिए आए हैं, वो ज्ञान में चलते हुए जो 1 से 5 वर्ष तक के हैं वे हाथ खड़ा करेंगे। 1 से 5, ठीक है, नीचे करेंगे। जो 5 से 10 के बीच में है वो भी है, नीचे करेंगे। जो 10 से 15 के बीच में है वे भी है। जो 15 से 20 के बीच में है वे भी है। और जो 20 से ऊपर है, बहुत सुंदर, तो पूरा ही मिक्स ग्रुप है। और वैसे भी बाबा कहते हैं, कभी देखी ऐसी कोई यूनिवर्सिटी जहाँ बच्चा भी पढ़ रहा है, भाप भी पढ़ रहा है और दादा भी पढ़ रहा है, है ना? तो बहुत ही सुंदर बाबा का ये विद्यालय, और इसीलिए यहाँ पर क्लासेस जो भी रखेंगे हर एक को उसका फायदा होगा। तो अभी हम सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
आप भी अपना परिचय दो।
हाँ, शरीर का नाम इंद्रा बहन है। पिछले 34 वर्षों से ज्ञान मार्ग पर चलते हैं और 23 वर्षों से बाबा के यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। और पिछले 12 वर्षों से इस मधुबन कैंपस में शीलू दीदी के साथ ही रहकर उनकी सेवाओं में सहयोग देते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, ब्रह्मा बाप और माँ की कर्म भूमि, दादियों की भी कर्म भूमि, ऐसी महान भूमि पर आप सभी पधारे हैं। तो सर्व मधुबन निवासी तथा हमारी तरफ से भी आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बहुत अच्छे मौके पर आए हो। मार्च का महीना तो विशेष है ही। हमारी कितनी दादियां इसी महीने में अव्यक्त हुई है, एक लिस्ट है। इस साल गुलजार दादी, पिछले साल जानकी दादी, 3 साल पहले निर्मल शांता दादी, उसके पहले चंद्रमणि दादी, सब मार्च महीने में ही अव्यक्त हुए। तो अव्यक्तारोहण का ये ऐसा शक्तिशाली महीना है और बाबा ने तो कहा है कि ये सब दादियां गई नहीं है, जैसे बाबा मम्मा भी गए नहीं हैं, लेकिन अभी और भी ज़्यादा शक्तिशाली सेवा होगी। बाबा अव्यक्त होने के बाद सबको संकल्प चला कि अब क्या होगा, और देखो बाबा के अव्यक्त होने से कैसे विदेशों का दरवाज़ा खुल गया है ना। मम्मा अव्यक्त हुए तो भी बहुतों को संकल्प चले, मम्मा चली गई, पर बहुत बड़ा इसमें राज था, क्योंकि बाबा ने कहा अभी एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी मम्मा। तो तब से एडवांस पार्टी क्या है वो बाबा ने स्पष्ट किया, कैसे वो सतयुग को लाएंगे, देवताओं को जन्म देंगे, उनकी तपस्या बहुत ही अपना प्रभाव डालेगी और उसमें मम्मा लीडर होगी। बाबा अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी बाबा का अव्यक्त स्वरूप देखती थी वतन में, तो सबको ये पता था कि ये ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन करके फरिश्ता बनेंगे। फिर दादियां भी गई और अभी जो गुलजार दादी अव्यक्त हुए, आज भी बाबा ने बहुत सुंदर राज खोला कि अभी इनसे भी आगे सेवा बढ़ेगी। और बाप दादा दादियां तो है ही, लेकिन बाबा वाली दादी, गुलजार दादी को क्या कहते थे, बाबा वाली दादी, तो इनके द्वारा भी बहुत सेवा होगी अव्यक्त रूप में, और हो सकता है साक्षात्कारों का पाठ शुरू हो जाए, क्योंकि गुलजार दादी को बचपन से ही साक्षात्कार की देन थी, जिस देन के कारण वो कितना सहज वतन में जाती थी, संदेश लाती थी, कितने राज उनके द्वारा स्पष्ट हुए। और अभी तो और भी होगा, अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होंगे, देवियों के साक्षात्कार, फरिश्तों के साक्षात्कार, और आत्माएं खींची हुई यहाँ आएगी। इसलिए बच्चों को अब ऐसा तैयार होना है। तो कैसे होंगे हम तैयार, जब हम अपनी अवस्था पर ध्यान देंगे। जो बाबा कहते हैं आपका चेहरा और आपकी चलन ये दोनों सेवा करें। अभी भल हम कहेंगे दादियां अव्यक्त हुई, लेकिन जिनको तैयार किया वो अब तैयार होकर औरों को तैयार करेंगे। वो दादियां तो फिर भी थोड़ी थी, और अभी तो इतने बाबा के बच्चे हो गए हैं। अगर एक एक तैयार होकर फरिश्ता रूप अपना स्पष्ट करे, दिखाए, तो कितनी आत्माएं बाबा को पहचानेंगी। तो अभी वो समय आ गया है जो बाबा कहते हैं माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, वो भी आएगा समय। वो भी समय आया पिछले साल जो बाबा ने कहा था कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो भी समय देखा ना सबने। पिछले साल क्या था, घर में रहो, घर में रहो, बाहर मत निकलो, बाहर मत आओ। तो वो भी समय देखा, और वो भी समय देखेंगे जो बाबा के बच्चों के आगे क्यों लगेगी, वो भी आएगा समय। और इससे बाबा के बच्चों की अवस्था जो ऊंची हो जानी चाहिए वो होगी, और साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो ऐसे के लिए तैयार है ना आप सभी, है ना सभी तैयार। इसलिए आप सभी मधुबन धरनी पर पहुंचे हो। मधुबन ये दो शब्द है वैसे कहें तो, मधु और बन। और मधु का मतलब है संगठन, शहद कैसे बनता है, मधु कैसे बनता है, अनेक मधुमक्खियां चाहिए शहद बनाने के लिए, एक मधुमक्खी से थोड़ी होगा, उनका पूरा छज्जा होता है, हजारों मधुमक्खियां चाहिए तब शहद बने। तो मधु माना शहद, मधु माना मिठास, मधु माना संगठन, और बन माना जंगल, जंगल एकांत तपस्या। पहले तो जंगलों में ही जाते थे ना ऋषि मुनि, तपस्या करते थे, साधु सन्यासी जंगलों में ही रहते थे। तो बन माना जंगल तपस्या, और तपस्या माना एकांत। तो मधुबन वो धरनी है जहाँ संगठन का भी अनुभव होता है, लेकिन साथ साथ एकांत का भी आप इतना सुंदर अनुभव यहाँ कर सकेंगे, क्योंकि दुनिया की निगाहों से दूर है, प्रदूषण से दूर है, भीड़ से दूर है, अशुद्ध वातावरण से दूर है, मोटर गाड़ियों की हलचल से दूर है। तो इतनी दूरी है जो ऐसे अनुभव कर सकते हैं कि बिल्कुल दुनिया से एकदम कट ऑफ। तो संसार समाचार क्या होता है उनसे भी परे ये 3-4 दिन आप अनुभव करना, बिल्कुल ऐसे न्यारे बन जाओ जैसे कि आप मरे, मर गई दुनिया, ऐसे न्यारे। एक ऐसा जीवन जो एकदम मरजीवा जीवन, मर गए दुनिया से और भगवान की दुनिया में जी रहे हैं, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। और जैसे आपको बैज दिया गया उस पर लिखा है संस्कार परिवर्तन योग तपस्या, तो बहुत बड़ा लक्ष्य इस भट्टी का है पहले अपने अंदर का आत्मनिरीक्षण, क्योंकि संस्कार परिवर्तन करना है ना, तो आत्मनिरीक्षण करना बहुत जरूरी है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या अभी तक कमजोरियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, खामियां हैं, कौन से ऐसे पुराने संस्कार हैं जो मिट नहीं पाते हैं, और फिर कैसे उनको हम परिवर्तन करें। ये योग तपस्या वट्टी कहो, जिसमें हमें योग की ज्वाला जलानी है, और इस अग्नि में वो पुराने संस्कार सुहा करने हैं। पहले तो निरीक्षण करना है कौन से है संस्कार ऐसे मेरे अंदर, फिर विश्लेषण भी करना है कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं और हम कहाँ तक पहुँचे हैं। कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा कि हिम्मत हिम्मते मर्दा मददे खुदा, तो बच्चे हिम्मत रखे तो मदद बाबा की पदम गुना मिलेगी। तो एक हिम्मत का कदम तो आपने बढ़ाया जो यहाँ तक आप पहुँचे। कईयों ने आपको रोका होगा, अरे भाई मत जाओ, कोरोना है। लेकिन आपने किसी का सुना नहीं है ना। कई तो जिन्होंने सुना वो तो रुक गए, ऐसे भी होगा। तो कोई तो रुक गए, और कोई ऐसे भी होंगे जिनको आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन आखिरी क्षण उनको पूछा गया आप जाएंगे, एक सीट खाली है, तो कहा क्यों नहीं, और तैयार हो गए। हाँ, ऐसे भी होंगे। लेकिन हम जरूर ये कहेंगे कि जो पहुंच गए वो बहुत भाग्यवान। इसलिए अपने लिए आप ताली बजाओ, हाँ, कि हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको मधुवन में, पांडव भवन में वो भी बट्टी करने का मौका मिला। मुझे बता रही थी हमारी इंदु बहन या कई और आपकी बहनें कि ऐसे कई भाई बहने हैं जो मधुवन तो आए होंगे, चार धाम की यात्रा करने आए होंगे, पर नीचे ही रहे हैं, शांति वन में, पांडव भवन में कभी नहीं रहे हैं, और पहली बार पांडव भवन में रहेंगे। वो हाथ उठाएं, देखो सारे ही लगभग पहली बार पांडव भवन में रहेंगे। तो ये भी कई आते हैं नीचे से, शांति वन से, बहन जी एक दिन के लिए हम भट्टी करेंगे, एक दिन के लिए अमृत वेला हमको यहाँ करना है, अमृत वेला। ऐसे अनुभव होता अमृत वेला जैसे मम्मा बाबा दादियाँ विचरण कर रही है, सबको सकाश दे रही है। तो एक दिन के लिए हम आए बस, और बाबा की वरदान भूमि से वरदान प्राप्त करके जाएं। तो आप तो चार दिन रहेंगे, हाँ, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन। तो बाबा से कितने वरदान प्राप्त करके जाएंगे, कितनी सकाश लेकर जाएंगे, वो आप पर निर्भर है, कितनी आप में हिम्मत है। क्योंकि बाबा तो झोली खुली बांट रहे हैं, हाँ, लुटा रहे हैं, हम कितना ले पाते हैं वो हम अपने अपने अंदर देखें। तो बाबा ने हिम्मत का एक कदम कहा, और वो हिम्मत में क्या करना है कल बाबा ने बताया, याद करो अपने स्वमान को, मैं कौन, मेरा कौन। दादी जानकी तो सदा याद कराती थी ये कितना बड़ा स्वमान है, और अपना अनादि और आदि स्वरूप वो याद करो, हम कितने ऊंचे थे, कितने पावन थे, विश्व के मालिक थे। और वो स्वमान याद आते ही फिर वो हिम्मत आएगी, हमको फिर से बनना है। तो हिम्मत कैसे आएगी जब हम अपने स्वमान को याद करेंगे, हिम्मत कैसे आएंगी जब हम अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद करेंगे, हिम्मत कैसे आएंगी जब बाबा के महावाक्य याद आएंगे बच्चे, विजय तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है और जो कुछ कर रहे हो ये नया नहीं है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है, अपनी हिम्मत का बढ़ाओ। विजय तो तुम्हारे गले का हार है और कौन तुम्हारे साथ है, इतना बड़ा निश्चय पांडवों को ये निश्चय था, भगवान हमारे साथ है, तो विजय तो हमारी हुई पड़ी है। तो जिसके तरफ भगवान स्वयं हो उसकी हार हो सकती है? कभी नहीं। ये निश्चय, ये नशा अनुभव करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि अलबेला बनना है। बाबा ने ये भी कहा, हम विजयी नहीं होंगे तो और कौन होगा, ऐसे ही भाई अलबेलापन है, या हो जाएगा कर लेंगे, हो जाएगा गे करेंगे गे। बाबा कहते गे की भाषा नहीं बोलो, अभी हाय हाय तो खत्म हो गया, अभी वाह वाह, बस वाह वाह के गीत गाना है और अपने योग बल से वातावरण को पावरफुल बनाना है। जहां भी आप जाओ तो मधुबन है पावर हाउस, बैटरी चार्ज करने लिए आए हो, मधुबन है सागर का कंठा, बादल भरने आए हो, क्योंकि बहुत अभी सेवा बाकी है। जब ये कोरोना काल चल रहा था, कईयों ने देख पूछा क्या सेवा भी पूरी हुई, अभी हम लोग कोई सेवा नहीं करेंगे, खत्म हुआ, पूरा हुआ ड्रामा, खत्म। हमने कहा कौन कहता है, अभी तो और सेवा बढ़ेगी। और वही बाबा ने आज भी संदेश में कहा, जो आज 12वां लगा ना गुलजार दादी का, तो वेदांती बहन भोग लेकर के गई और गुलजार दादी ने वतन में इच्छा जाहिर की कि बाबा, बाप दादा को कहा, बाप दादा बहुत समय से डायमंड हॉल में हमने दृष्टि नहीं दी, 3 साल दादी बॉम्बे में थी तो डायमंड हॉल याद आ रहा है, सब भाई बहने याद आ रहे हैं, तो बाबा से कहा कि हम डायमंड हॉल में जाकर सबसे नैन मुलाकात करें। तो बाबा ने कहा कि आप अकेली नहीं जाओ, हम भी आपके साथ चलेंगे बाप दादा। तो वेदांती बहन के तन में बाप दादा और गुलजार दादी आए और कैसे सबको दृष्टि दी, कितनी देर तक दृष्टि दी, जो भी स्टेज पर बैठे थे, फिर सारी सभा को दृष्टि दी। पर बाबा ने कहा था दादी को कि जाएंगे, हाँ गो सुन कम सुन, जल्दी आएंगे वापस। तो ऐसा ही हुआ, तो करीब 10 मिनट मैं समझती हूँ, 5-7 मिनट 10 मिनट कैसे उठे और दृष्टि सबको दी। नीलू बहन को बुलाया तो जैसे नीलू बहन का हाथ पकड़ती थी दादी, तो हाथ पकड़ा और स्टेज पर पहले जो वरिष्ठ बैठे थे उनको दृष्टि दी, फिर सभा को दृष्टि दी और फिर वापस स्थान पर बैठ के वतन में चले गए, बोला कुछ नहीं। लेकिन वेदांती बहन ने तो बहुत अच्छा समाचार, बहुत बाबा संदेश सुनाया कि कैसे एडवांस पार्टी वालों की आपस में रूरियान चल रही थी, मीटिंग कर रहे थे कि अभी आगे का प्लान क्या है। तो हम बाबा से पूछते, बाबा आगे का प्लान क्या है, तो बाप दादा और गुलजार दादी एडवांस पार्टी के साथ आगे का प्लान बना रहे थे। तो इसलिए अब जरूर और भी सेवा होगी। और बाबा ने सबको निश्चिंत किया क्योंकि सबके मन में ख्याल तो चल रहा है ना, बड़ों के मन में भी ख्याल चल रहा है। तो सबको बाबा ने निश्चिंत किया, बच्चे आप कोई ख्याल नहीं करना, यज्ञ बाबा का है, उनका है ना, हम लोग तो निमित्त हैं। कैसे चलाना है, कैसे सेवा होनी है वो बाबा जाने, और कैसे ये सेवा और आगे बढ़नी है, और भी दिन दुगनी रात चौगनी गति से और आगे बढ़नी है, बच्चे तैयार हो जाएं। बस बाबा बार बार यही कहते हैं, क्या करें बच्चे, तैयार हो जाएं, कर्मातीत बने, अपना साक्षात्कार कराए। दादी गुलजार तो साक्षात मूर्त थी, बिल्कुल साक्षात मूर्त, अंतिम घड़ी तक दृष्टि दी सबको। ज्यादा बोलती तो वैसे भी नहीं थी, डॉक्टरों ने इतनी महिमा की, कभी ऐसे पेशेंट की महिमा नहीं करते, लेकिन जो डॉक्टर्स थे खास आए थे, देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पर, उन्होंने भी जो महिमा की दादी की, कहते ऐसा पेशेंट हमने कभी नहीं देखा। और दादी ने अपना भी अनुभव सुनाया, मैं तो शरीर में थी ही नहीं, मैं तो बाबा के पास थी। अब कुछ भी कर रहे हैं वो तो, उसको तो कुछ भी अनुभव नहीं, दृष्टि देती थी बस, दृष्टि देती थी, मुस्कुराती थी और बाबा के पास। बाबा ने तो उसको जैसे वतन में ही रखा था, पर अंतिम हिसाब किताब शरीर का चुप्त हो रहा था, पर वो तो बाबा के पास ही थी। तो इसलिए अभी बाबा बहुत कुछ कराएगा, बस आप बच्चे तैयार हो जाओ। तो क्या करेंगे हम सभी, क्या करेंगे? तो मौका मिला है, यहाँ 3 दिन इतनी तपस्या करो, जो वापस जब आप जाएं तो सब महसूस करें कि ये तो बदल गए, ये तो बदल गए। हाँ, क्योंकि अग्नि में पड़ना माना हर चीज परिवर्तित हो जाती है ना। कोई भी चीज आग में डालो उसी रूप में बाहर नहीं आती है, बदल जाती है। जैसी वो चीज होगी परिवर्तन हो जाता है, चाहे रूप का परिवर्तन, रंग का परिवर्तन, गुणों का परिवर्तन, कर्तव्यों का परिवर्तन, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ न परिवर्तन जरूर होता है हर चीज। तो हम भी इस योग तपस्या में ऐसे परिवर्तित हो जाए जो वही जो पुराना स्वरूप न रहे। तो इसलिए कैसे तपस्या करेंगे, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो पहला लक्ष्य क्या है, आपको समय मिला है अपने अंदर अपने आप में टटोलने का, क्योंकि वहां तो परिवार गृहस्थी धंधा नौकरी पता नहीं क्या क्या झमेले झमेले, और यहाँ पर कुछ नहीं है, है कुछ हा? बस तपस्या करनी है और कुछ नहीं है, कोई बाहर का वातावरण नहीं है, न ख्याल आना चाहिए आपको। जैसे कहते ना, आप मोए मर गई दुनिया, वैसा ही आपको अनुभव होना चाहिए। कुछ कारोबार आप छोड़ के आए होंगे, कहा होगा भाई 4 दिन के बाद हम आएंगे तो देखेंगे, आपको यहाँ ख्याल चलेगा पता नहीं जिसको मैं देके आया हूँ कह के आया हूँ वो कुछ करेगा भी या नहीं, फिर पूछते रहेंगे भाई हुआ नहीं हुआ। हाँ, उसमें भी जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप नहीं है ना तो बाबा देखेगा, आपको देखने की आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, आपने तो बाबा के ऊपर सौंप दिया ना बाबा को, और आ गए ना यहाँ कि वो लेकर आए हो जिम्मेदारियां। लेके तो नहीं आए हो ना, जो सच जो लेके आए हैं थोड़ी थोड़ी वात उठाई थोड़ी नहीं। माताओं को बाबा ने उस दिन कहा ना, चलो बच्चे याद नहीं आएंगे पर पोते दोते बहुत याद आते हैं, क्योंकि वो पोते दोते तो वो ब्याज है ना। जैसे आपका अकाउंट में पैसा होगा बैंक में, तो बैंक में जितना पैसा है वो तो है ही है, तो परंतु आप जब अपना पासबुक देखेंगे तो क्या देखेंगे, अपडेट कराया तो क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना आया ब्याज कितना आया, ब्याज तो ब्याज आएगा तो उसकी खुशी होती है ना। तो पोते दोते क्या है ये सब, ये ब्याज इंटरेस्ट है, तो उसमें इंटरेस्ट ज्यादा जाता है। आपने तो पैदा नहीं किए हैं लेकिन उनमें ज्यादा मोह हो जाता है तो बाबा कहते हैं कि वो उसमें भी इंटरेस्ट ना हो, सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं, मैं भी बाबा की, हाँ मैं बाबा का। तो बच्चे बन जाओ, और आप मधुबन में आए हो तो मधुबन के चार धाम तो मशहूर है ही, सारी दुनिया आती है, बाबा के बच्चे आते हैं देश विदेश के बाबा के चार धाम की यात्रा करने। तो वो चार धाम तो प्रख्यात है ही है, गंगोत्री जमुनोत्री, हाँ क्या है ये क्या बोलते हैं हाँ वो केदारनाथ बद्रीनाथ या जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी मंदिर है वो तो सब है ही, लेकिन ये ब्रह्मा बाबा के चार धाम जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, बाबा का कमरा जहाँ बाबा रहते थे, तो वो कमरा ऐसा चार्ज कमरा है, इतना शक्तिशाली कमरा है, जहाँ जाते ही अनुभव करते हैं जैसे हम दूसरे लोक में पहुँच गए, मात पिता की गोद का अनुभव होगा, हम छोटे बच्चे बन गए, बस छोटा बच्चा बन जाओ। छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट, एकदम इनोसेंट, उनको कुछ दुनिया की सुध बुध नहीं, कुछ ख्याल नहीं, एकदम छोटे बच्चे। तो ऐसे छोटे बच्चे बन जाओ, और बाबा कहते हैं बच्चे बनेंगे तो बच जाएंगे, बच्चा माना बच गया, बच गया दुनिया की बातों से बच गए। तो इसीलिए बाबा के कमरे में जाते ही छोटा बच्चा कैसे माँ बाप की गोद में जाता है, इतना वो निश्चिंत हो जाता है, ऐसा अपने आप को समझना, बिल्कुल एक बाबा दूसरा ना कोई, और बाबा से मीठी मीठी रूरिहान करना, जैसे बच्चा अपने पिता से करता है, इतना प्यार पाता है, अधिकार भी मिलता है, बच्चे को अधिकार मिलता है, पिता समझता है ना कि मेरे जो कुछ मेरा है ये सब बच्चों के लिए है, तो अधिकार भी है, लेकिन वो अधिकार पाने के लिए बच्चा बनना पड़ेगा, बड़ा हूँ सेठ हूँ साहूकार हूँ ये हूँ तीन बच्चों का बाप हूँ ये सब नहीं, इतना बड़ा मेरा धंधा है व्यापार है इतना बड़ा परिवार है कुछ नहीं, मैं कौन हूँ क्या हूँ, छोटा बच्चा हूँ बस। तो छोटा बच्चा बन जाओ, बाबा के कमरे में बैठो बिल्कुल निश्चिंत, बस बाबा से सकाश लेते रहो, बाबा की गोद में जैसे विश्राम प्राप्त करो। वैसे तो हिस्ट्री हॉल दूसरा धाम है लेकिन वहाँ अभी काम चल रहा है क्योंकि बहुत सालों से पेंडिंग था, बाबा 62 में ये हॉल बना था हिस्ट्री हॉल, उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं हुई, आप सोचो, तो बहुत सारे वो ये दीवारें थोड़ी चू रही थी, पानी आ गया था तो सब, इसलिए सारा सीमेंटेड कर रहे हैं, और वो वायर्स भी सब पुरानी ज़माने की, वो सब अंडरग्राउंड कर रहे हैं, तो सारा क्योंकि कब करें हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा तो भी वो भी बना दिया लेकिन हिस्ट्री हॉल नहीं बना सके, तो इसलिए आज अभी कुछ 10-12 दिन और लगेगा, इसलिए हिस्ट्री हॉल में तो नहीं जा सकेंगे, परंतु फिर भी हिस्ट्री हॉल में हम लोग क्या अनुभव करते हैं, बाबा को टीचर के रूप में, स्टूडेंट पढ़ाई, बाबा पढ़ाई पर कितना ध्यान देते हैं, बाबा कहते एक एक ज्ञान का रत्न वर्जन, एक एक वाक्य महावाक्य लाखों रुपयों का है। सत्य ज्ञान जो भगवान ने दिया किसी शास्त्र में नहीं है, किसी समय भगवान देते हैं। इसलिए आता है ना, मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ, मेरा परिचय, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ही बताता हूँ। इसलिए भगवान को ही अपना परिचय देना पड़ता है। वैसे तो दुनिया में तो दूसरे परिचय देते ना किसी का, किसी बड़े व्यक्ति का परिचय वो खुद थोड़ी देता है, दूसरे देते हैं। लेकिन भगवान को अपना परिचय खुद देना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं जानता उसको। इसलिए मुरलियों में ना मैं ज्ञान का सागर हूँ मैं। तो किसी ने कहा कि क्या बाबा को इतना अपना अभिमान है, मैं ऐसा, ये अभिमान नहीं है। देखो किसका मोबाइल बज रहा है। हाँ, मैं ये बाबा को अभिमान नहीं है, लेकिन कौन दे परिचय भगवान का? हाँ, भगवान खुद ही देगा ना। गीता में भी अपना परिचय खुद देता है, मैं सब पहाड़ों में, मैं हिमालय पहाड़ हूँ, सब नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, ये सब हाथियों में वो कौन सा अरावत हूँ। तो ये परिचय भगवान ये देता है, पर ये सब सिद्ध करता है कि मैं ऊंचे से ऊंचा हूँ। आज भी बाबा ने कहा कि वो साथ कहेंगे सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते वो ऊंचे से ऊंचा है, वो एक है, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी ऊंचे से ऊंचा वो एक है, फिर सर्वव्यापी कैसे हुआ? परंतु मेरा सही परिचय नहीं है। कहाँ है सही परिचय? तो भगवान को अपना परिचय देना पड़ता है। तो कैसे टीचर बन करके बाबा हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे और अपना परिचय शिव बाबा देते थे ब्रह्मा द्वारा, और ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी स्टूडेंट बन के सुनता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की, योगी मुरली मिस, क्योंकि उनके द्वारा ही तो बाबा बोलते थे। इसलिए वहाँ स्टूडेंट का अनुभव हम करते हैं। और हमारा टीचर कौन? ऊंचे से ऊंचा, जिसका कोई टीचर नहीं, तो वो नशा हिस्ट्री हॉल में अनुभव कर सकते हैं। ज्ञान का मनन चिंतन हिस्ट्री हॉल में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर बाबा की झोपड़ी, तो हिस्ट्री हॉल में बाबा को टीचर रूप में, और झोपड़ी में कुटिया में बाबा को सखा रूप में देखना। वहाँ बैठ करके बाबा को पत्र भी लिख सकते हैं, पत्र लिखना, वहाँ पर लेटर बॉक्स है, बाबा के कमरे के बाहर भी लेटर बॉक्स है। आपको बताया होगा सवेरे या शाम को बाबा को पत्र लिख करके डाल दो, और कुछ भी आपके मन में जो कुछ है वो बाबा को पत्र में लिख के डाल दो, बाबा आपका पढ़ेगा। हाँ, और कोई नहीं पढ़ता, बस बाबा ही जाने, आप जानो। इसलिए बाबा को सखा रूप में देखो झोपड़ी में, जो अंदर की बात है सब बाबा को सुनाओ, सब सुनाओ, खाली करो अपने आप को, दिल खाली करो, हल्के हो जाओ, बिल्कुल सखा है आपका। जैसे माँ बाप को नहीं सुनाया जाता है, माँ बाप से तो प्यार लिया जाता है, टीचर से भी पढ़ाई ली जाती है, अपने दिल की बातें नहीं सुनाते, पर सखा मित्र दोस्त उनको तो सब बातें बताते हैं। तो बाबा को मित्र के रूप में, खुदा दोस्त के रूप में देख करके बाबा से बातें करो, जो भी अंदर में है, कूड़ा किचड़ा जो भी, सब बाबा को दे दो, बाबा को बता करके दे दो, और खाली हो जाओ, खाली हो जाओ बस, और पुरानी चीजों से खाली एकदम, तब हल्के होंगे। और फिर शांति स्तंभ, शांति स्तंभ पर जाते ही क्या अनुभव करेंगे? बाबा सतगुरु रूप में मेरे सामने है, बिल्कुल सतगुरु। सतगुरु की याद से आत्मा पावन बनती है, गुरु बिना गति नहीं ना। तो है तो सतगुरु की बात, शिव बाबा की बात, शिव बाबा से ही सदगति होती है। और वही सतगुरु हमें क्या कहते हैं? बच्चे मैं आया हूँ ले जाने के लिए, मैं कालों का काल हूँ, महाकाल हूँ। महाकाल को बुलाते हैं, पतित पावन को बुलाते हैं, तो महाकाल क्या करेगा? सबको मुक्त करेगा ना, पतित पावन क्या करेगा आकर के, पावन बनाएगा ना, दुख हरता सुख करता आकर क्या करेगा, दुख हरेगा सुख देगा। तो बाबा कहते मैं आया हूं तुम्हारी पुकार सुनकर, मैं आया हूं इसी समय ही आता हूं, फिर नहीं आता हूं सारे कल्प में। तो सतगुरु रूप में बाबा को याद करके इतनी शुद्धि अपने अंदर लाओ जैसे ब्रह्मा बाबा ने लाई, गुलजार दादी ने लाई, सब दादियों ने लाई। हम देखते थे दादियों को, सबको, वहाँ बड़ा भाग्य था मेरा दादियों के अंग संग रहना। बाबा मम्मा को भी देखा क्योंकि 1959-60 उसी समय मैं ज्ञान में आई हूँ, छोटी थी। लेकिन मम्मा से भी मिले, बाबा से तो बहुत मिले, और फिर दादी प्रकाशमणि तो हमारी टीचर थी, मुंबई की हूँ तो दादी तो वहीं रहती थी, सब दादियाँ आती रहती थी, तो सबसे मिलना होता था, तो मेरा सौभाग्य है ही। और अव्यक्त बाप दादा के साथ तो कितने सालों तक यहाँ मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे तो हम यहाँ बैठ करके ट्रांसलेट करते थे बिल्कुल सामने, और सारी सारी रात बाबा के अंग संग, अव्यक्त बाप दादा के अंग संग बैठ के बाबा को हाथ में टोली देना, क्योंकि बाबा एक एक से मिलते थे। जिन्होंने मेडिटेशन हॉल में अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात की हाथ उठाओ जी, बाकी ओम शांति भवन में तो बहुतों ने किया होगा, हाथ उठाए ओम शांति भवन में जिन्होंने किया थोड़े, और बाकी तो डायमंड हॉल में। और जिन्होंने अव्यक्त बाप दादा को नहीं अनुभव किया क्योंकि पिछले 3 साल से तो नहीं था, वो हाथ उठाए। अच्छा गुलजार दादी को भी नहीं देखा, जिन्होंने गुलजार दादी को नहीं देखा हाथ उठाए। अच्छा 4-5 है, चलो फिर भी अभी तो फिर भी चलो, उस समय बाबा मम्मा के समय तो ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं थी, अभी तो कम से कम वो वीडियोस तो है जो हम देख सकते हैं। मम्मा के समय तो फोटोज भी कौन से थे, ब्लैक एंड वाइट, बाबा के समय ब्लैक एंड वाइट, कलर्ड भी कुछ नहीं था, तो इसीलिए वीडियो की तो बात ही नहीं थी। कोई कोई थोड़ा बहुत किसने किया था, वो मोबाइल मोबाइल की तो बात ही नहीं, अभी तो हर एक व्यक्ति फोटोग्राफर हो गया है मोबाइल के कारण हर एक फोटोग्राफर हो गया है, तो सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं अपने मोबाइल में। लेकिन बाबा मम्मा के समय तो था नहीं, इसलिए वो तो चलो फिर भी कुछ टेप मशीन थी जो थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग्स है ऑडियो, लेकिन वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं है। परंतु गुलजार दादी जब अव्यक्त बाप दादा का पाठ शुरू हुआ तो उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई, और कैसे ये सब अभी हम रिवाइज कर रहे हैं। साकार मुरलियाँ तो बहुत कम हैं, पर अव्यक्त मुरलियाँ तो शुरू से ही है, क्योंकि साकार जब बाबा अव्यक्त हुए तो 5-6-7 साल की मुरलियाँ हैं, क्योंकि बाबा यही कहते थे बच्चे क्या करेंगे, ये कागज़ तो फट जाएगा, ये कागज़ तो फट जाएगा। उस समय ये सीडीज और पेन ड्राइव ये थोड़ी कुछ था, कुछ भी नहीं था, कागज़ पर ही होता था, वो भी अभी तो इतना सहज फोटोस्टेट हो जाता है, उस समय तो स्टेंसिल पर लिखते थे, इतना जोर लगाना पड़ता था, उसके पहले तो टाइपराइटर होता था, 4-4 कॉपीज ही निकलती थी, तो टाइपराइटर पर कितना जोर दे सकेंगे। उसके बाद स्टेंसिल आया तो चलो 100 के लगभग एक साथ चलो निकालते थे वो फोटो, उसको क्या बोलते लिथो करते थे, हाँ। उसके बाद चलो फोटोकॉपी आया, लेकिन अभी तो डायरेक्ट लाइव दे सकते, विज्ञान का बहुत सुख है, तो इसीलिए अभी तो बहुत सहज हो गया है। तो ये तो पता ही नहीं था ना कि साकार बाबा ऐसे चले जाएंगे, पर अव्यक्त बाप दादा का पाठ जैसे शुरू हुआ तो सब नोट करने लगे, वो सब रिकॉर्डिंग्स है। इसीलिए अव्यक्त मुरलियाँ तो साकार मुरलियों से भी ज़्यादा है, मतलब भले क्योंकि सीजन में आते थे बाबा, परंतु अवश्य वो है, तो इसीलिए हम वो अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा के शांति स्तंभ पर जब आप जाएं तो क्या अनुभव करें, सतगुरु का रूप। और ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपनी हड्डियां इस यज्ञ में स्वाहा की, अंतिम घड़ी तक सेवा की, लास्ट दिन भी 18 जनवरी की शाम भी बाबा मुरली चला करके कमरे में आए, और 8:45 के लगभग रात को सब भोजन वोजन सब कर चुके थे, और उसी समय जैसे बाबा अव्यक्त हुए। तो वो भी कैसा अनुभव था। और दादी जी उनके सामने, बाबा ने दादी को दृष्टि के द्वारा सब विल कर दिया, जो बाबा मुरलियों में कहते हैं दृष्टि और हाथ, बस सारी शक्ति भर दी। बहुत अच्छा अनुभव सुनाते थे दादी जी। तो इसीलिए दादी और दीदी दो हंसों का जोड़ा बनकर इस यज्ञ को कितना आगे बढ़ाया। साकार बाबा के समय तो बहुत कम था, फिर दीदी गए 83 में, लेकिन उसके बाद और सेवाएं बढ़ी, फिर दादी जी गए और सेवाएं बढ़ती गई, जानकी दादी गए तो विदेशों में कितनी हमारी सेवाएं बढ़ गई है, और अभी गुलजार दादी के अव्यक्त होने से तो साक्षात्कार का पाठ खुल जाएगा जरूर, आत्माओं को घर बैठे साक्षात्कार होंगे। बाबा ने आज भी कहा, जैसे शुरू शुरू में हुए थे ना, बाबा को देखते ही ध्यान में चले जाते थे, या घर बैठे उनको श्री कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, और श्री कृष्ण उनको कहता था मेरे से मिलना है तो पहले इनके पास जाओ, तो बाबा सामने आते थे और उनको बाबा को ढूंढते ढूंढते बाबा के पास पहुंचते थे। वो उस समय की बात है, बाबा कहते वो फिर रिपीट होगा, हम बच्चों की स्थिति का साक्षात्कार वो उससे आगे होगा जब जब अंत का समय आएगा, लेकिन अभी जो आएगा लोगों को अनुभव होगा और वो खींचे हुए चले आएंगे, यहाँ आपसे साक्षात्कार करेंगे, आपको साक्षात मूर्त बनना है। तो दादियां बाप समान बनी, अभी बाकी जो दादियों ने किया वो हमें करना है। तो शांति स्तंभ पर आप जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे अनुभव करना जैसे हम बाबा में समा गए, बिंदु सिंधु में समा गया, मैं आत्मा शांत स्वरूप बन के शांति के सागर में समा गई, प्रेम स्वरूप बन के प्रेम के सागर में समा गई। समाने का अनुभव, ये समाने का अनुभव माना समान बनने का अनुभव, तो समाना माना समान बनना, एक हो जाना, इसको कहेंगे बाप समान। बाबा कहते आत्मा परमात्मा नहीं बनती है, आत्मा परमात्मा तो सदा अलग है, लेकिन आत्मा परमात्मा के सब गुणों को धारण करके वो स्वरूप समान बन सकती है। बस वो ही अनुभव आप शांति संपर्क करना, बिल्कुल एकदम न्यारे बन जाना, और जितने न्यारे बनेंगे उतने ही सर्व के प्यारे बनेंगे। प्यारा बनने की कोशिश नहीं करो, न्यारा बनने की कोशिश करो। न्यारापन में प्यारापन भरा हुआ हो, न्यारापन का मतलब ये नहीं नफरत, कोई वैर दुश्मनी, कई वैर दुश्मनी नफरत के कारण न्यारे बन जाते हैं, वो नहीं। प्यार भी इतना सबके लिए हो, पर वो तब होगा जब आत्मिक दृष्टि होगी, क्योंकि बीज से प्यार है तो सारे वृक्ष से प्यार है, कई समझते ना, सबसे प्यार रखना माना भगवान से प्यार रखना। हम कहते सबसे प्यार रखने जाओ तो आप कहां तक सबसे प्यार रख सकोगे, भगवान से प्यार रखो तो सबसे प्यार हो जाएगा। जैसे पेड़ को पानी देना, एक एक पत्ते को देने जाओ तो कहां तक पानी पहुंचेगा, दे सकेंगे? दुनिया तो कितनी बड़ी है, कहां तक आप सबको प्यार देते जाएंगे। लेकिन बस भगवान से प्यार हो तो वो प्यार सब तक पहुंचेगा। इसलिए सबको प्यार ही देते रहना ये भी जरूरी नहीं है, न्यारा होना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत प्यारे होंगे ना तो फिर क्या होता है, कई बार बहुत मीठी चीज ऐसे रखी कहीं तो दूसरे दिन देखो तो चींटियां लग गई है ना, तो कितना ध्यान से रखनी पड़ती है मीठी चीज, पानी में रखेंगे, क्या क्या संभालेंगे ताकि चींटी न लगे, कोई मकोड़े न लगे। तो इसलिए बहुत प्यारा बनने की कोशिश नहीं करो, भगवान का प्यारा जरूर बनना है तो ऑटोमेटिकली सबके प्यारे हो जाएंगे। बाकी तो बाबा कहते हैं एक मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यहाँ तो आप पूरा उसका अनुभव कर सकोगे। देह और देह के सब संबंधों से जैसे मर गए, बस ये अनुभव यहाँ करना। तो इसलिए ये लक्ष्य है और उद्देश्य क्या है कि बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, फरिश्ता बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा बने, हमारी सब दादियां बनी, हमको भी उनके समान बनना है। ये नहीं सोचना हम तो बाद में आए हैं, हम तो पीछे आए हैं, हम कैसे जाएंगे। बाबा कहते सबको मौका है, सबको मौका है, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। बल बाबा कहते थे बच्चे लेट का बोर्ड लगाए, पर टू लेट का बोर्ड नहीं लगाए। लेकिन बाबा ने टू लेट तो शब्द कभी कहा ही नहीं है कि अभी टू लेट हो गया, बोल दिया, बोला क्या कभी, केवल लेट ही हुआ। कई हमसे पूछते थे फिर टू लेट का बोर्ड कब लगेगा, तो टू लेट का बोर्ड तो कब लगेगा जब वापस जाएंगे ना। टू लेट बस पूरा हुआ, खेल पूरा हुआ, तो खेल पूरा हुआ तब कहेंगे टू लेट, क्योंकि अंत में तो कुछ नहीं कर सकेंगे। ओम शांति। तो अभी तो आ रहे हैं हल्दर भाई, आ रहे ठीक है, हाँ समझ लिया ना सब। बस अभी मोबाइल सब स्विच ऑफ कर देंगे ना, हाँ घर में बता देना कि हम पहुंच गए। अभी 3 दिन कोई फोन नहीं करेगा, कोई ये म्यूजिक व्यूजिक कुछ नहीं बजना चाहिए, और अमृत वेले तो बिल्कुल नहीं। कहीं तो अमृत वेले भी अपना मोबाइल लेके आते हैं, समझ पता नहीं कौन अमृत वेले आपको फोन करेगा। इसीलिए मोबाइल तो स्विच ऑफ। कई समझते हम इसलिए नहीं, फोन करने लिए या आने के लिए नहीं, हम तो फोटो लेते हैं। तो फोटो क्या लेना है, आपका एक ही फोटो निकालना है, फोटो बड़ा सबका एक साथ फोटो निकालना है, तो वो निकाल सकते हैं एक साथ फोटो। रमेश भाई को कहेंगे पर निकालना है तो कल ही निकलेगा। तो कल तो सवेरे मुरली के बाद शशि बहन आपसे मिलेंगे, और आपको टोली अभी नहीं है ना, अभी है अच्छा। कल शशि बहन आपसे मिलेंगे सवेरे मुरली के बाद, नहीं तो वो इस समय मिलते हैं लेकिन वो बिजी है, तो कल सुबह आपसे मिलेंगे। अभी तो हम आपको टोली देंगे, पर आया नहीं अंदर। नहीं वो हल्दर भाई को गीत गाना, किसी को कुछ पूछना है? सभी महादेव नगर के ही है या दूसरे सेंटर्स के भी? जो महादेव नगर प्रॉपर से कौन है? अच्छा, नारायणपुरा, अच्छा नवरंगपुरा, चांदखेड़ा, अच्छा सहारनपुर, अच्छा और नरोड़ा, और खरज, अच्छा साधना भवन के कौन है? अच्छा साधना भवन के भी स्टूडेंट्स हैं आसपास, तो बहुत मकान। अच्छा वेरी गुड। हम आए थे ना कुछ साल पहले, जब बड़ा वो मैदान में भट्टी रखी थी, और उस समय थे कौन थे सब, जो जब बड़े मैदान में भट्टी रखी थी? हाँ सब थे, बहुत अच्छा था, बहुत आनंद आया उस समय। तब हमने अच्छा ठीक, चंद्रिका बहन से बात हुई, कहा मैं तो नहीं आऊँ, मुझे मैंने कहा आप भी आ जाओ, कहा नहीं उनको आई तो है नीचे आई है, वो सब 26 तारीख आएगी। ठीक चलो,
सबको ठीक मिला?
हाँ अकोमोडेशन सबको ठीक मिला, आराम से है सब, कमरा सब ठीक है ना? दादी जी हमेशा पूछते थे कि सब ठीक है। अभी तो वैसे मौसम तो अच्छा है, गर्मी नहीं है ठंडी भी नहीं है, वहाँ तो गर्मी चालू हो गई होगी ना अहमदाबाद में तो। चलो बहुत अच्छा।
ओम शांति। तो दीदी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं, एक हाथ हिलाकर शुक्रिया करते हैं, हमें बहुत अच्छी से भट्टी का लक्ष्य स्पष्ट किया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज ही पूरे विश्व भर में दादी गुलजार जी के निमित्त, या कल किसी ने आज भोग लगाया है, और मधुबन बेहद घर में भी आज ही लगा, नीचे भी आप लोगों ने सुना तो होगा सब कुछ। तो चूंकि आज अव्यक्त दिवस ही है, इसलिए दादी के प्रति ही श्रद्धा सुमन वाला गीत हमारे भाई सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। वैसे तो हम स्वागत गीत रखते हैं, लेकिन आप आए ऐसे दिन है तो हम सभी मिलकर दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हल्दर भाई जी जो बहुत ही समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में, खुद ही गीत लिखते भी हैं और गाते भी हैं।
ओम शांति। संगम युग में हम सभी संगम युग ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के ड्रामा में जो नुंदा हुआ दृश्य देखने को मिलता है, और इस दृश्य के आधार पर हम अपना पुरुषार्थ, अपने स्थिति को कैसे कायम रखें। स्वयं बाप दादा भी हम सबको वरदान कहें, मदद कहें, जिसके आधार पर हम सबको मजबूत करते हैं। आप सभी ने आज संदेश भी सुना होगा कि बाबा अपने बच्चों के मनोकामना कैसे पूरा करते हैं। दादी ने भी कैसे बाबा को अर्जी की कि बाबा मुझे डायमंड हल में, तो इसीलिए दिनों दिन बाबा को शुक्रिया करते जाएं, दादियों को शुक्रिया करते जाएं, तो हम अपने आप बाप समान, दादियों समान बन जाएंगे। इसलिए एक श्रद्धा सुमन दादियों के लिए, खास गुलजार दादी के लिए आप सभी की ओर से हम सभी समर्पित करेंगे। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें, जिन्होंने दिया है जीवन हमें। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें। से निकाले है यज्ञ नैया, किनारे है लाए बन कर खिवैया, भंवर से निकाले है यज्ञ नैया, किनारे है लाए बन कर खिवैया। हे आदि रत्नों सद्भाव चमन, सादर नमन करके अर्पित तुम्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें।
हम जो बने हैं तुम्हारी बदौलत, हम जो भी पाए तुम्हारी ही दौलत। हम जो बने हैं तुम्हारी बदौलत, हम जो भी पाए तुम्हारी ही दौलत। हमें नेक राहों पे चलना सिखाया, आदर्श बनकर बनाया हमें। ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें। त्याग तप से वह हम याद करते, सब दादियों संग सब याद करते। वो त्याग तप से वह हम याद करते, सब दादियों संग सब याद करते। सारा देवी परिवार गर्वित है कि आपने गर्वित हमें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें। जिन्होंने दिया है जीवन हमें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें, ये श्रद्धा सुमन है समर्पित उन्हें।
ओम शांति। तो भ्राता जी का भी धन्यवाद। हम सब ने मिलकर गीत के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए अपने आदि रत्नों को, दादियों को।